दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों में से एक द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर आज न्यूजीलैंड में हस्ताक्षर हो गए हैं। ये समझौता 12 देशों के बीच हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा दुनिया की पहली और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। इस समझौते पर 5 साल बातचीत चली थी और इस पर अंततः औपचारिक तौर पर अक्टूबर 2015 में सहमति बनी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने कहा कि ये एकता का क्षण है।
I am personally delighted to be here today to mark the signing of this most important agreement. What brings us together is a shared belief that opening and integrating our markets through trade and investment will enhance the prosperity of our peoples.
लेकिन इस बीच ऑकलैंड में इस समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। ये समझौता जो कुछ देश जो इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वहाँ राजनीतिक रूप से विवाद का विषय भी रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री एंड्रयू रॉब का कहना है कि समझौते से इस क्षेत्र के 98% टैरिफ्स खत्म हो जाएंगे। श्री रॉब ने स्काई न्यूज को बताया कि समझौते का मतलब है कि विश्व के 40% GDP या सकल घरेलू उत्पाद के लिए व्यापार के एक तरीके के नियम रहेंगे, और कि विदेशी सूत्रों का भी कहना है कि समझौते में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा विजेता रहेगा।
The United States Department of Agriculture, for instance, they have done some extensive work, and their conclusion is that with agriculture, the biggest winner by a country mile will be Australia, with a 19% increase by 2025, representing tens of billions of dollars of increased opportunity for Australian farmers.
इस समझौते पर और जानकारी के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में प्रोफेसर पूर्णेंद्र जैन से बात की।
देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका आर्थिक पहलू है और दूसरा इसका राजनीतिक या सामरिक पहलू है। तो आर्थिक पहलू को अगर ले तो देखें कि इसमें जो 12 देशों ने इस पे सिग्नेचर किया है आज ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, इसमें 40% वर्ल्ड की GDP ये 12 कंट्रीज के पास है और करीब ये 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी है, जैसा बताया 40% GDP ऑफ द वर्ल्ड। तो इस मामले में ये काफी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक दृष्टि से 12 विश्व के बड़े देश, जिसमें कि US और जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और 3-4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ईस्ट एशिया से, खैर साउथ एशिया से इसमें कोई भी कंट्री शामिल नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है और इसका असर दूसरे देशों पर भी, जिन्होंने जो इसके पार्ट नहीं है, जो इन्होंने साइन नहीं किया है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। उन पे कुछ बुरा असर भी पड़ सकता है, कुछ अच्छा असर भी पड़ सकता है। तो जब भी कोई इस तरीके के बड़ा आर्थिक ट्रीटी जब साइन होता है मल्टीलैटरल, तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि ये 12 कंट्रीज मिलके आपस में इनमें आयात निर्यात बढ़ेगा, कुछ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो इश्यूज हैं, उन सब चीज़ों के स्टैंडर्ड को ये लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ अच्छे पक्ष है। बाकी ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भारत है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। दूसरा पक्ष जैसा कि मैंने बताया, सामरिक पक्ष है। इसमें जैसा कि आपके श्रोताओं को पता है कि इसमें चीन शामिल नहीं है, और चीन सभी को पता है कि आज विश्व की दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। तो चीन इसमें शामिल नहीं है। एक तो उसको चीन को शामिल नहीं किया गया, या चीन शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बराक ओबामा, जो कि US के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें ये कहा था कि हम लोग या हमारे जैसे देश जो है, वो चाइना के ऊपर विश्व के रूल्स को बनाने को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये जरूरी है कि US रूल बनाए और चाइना के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा सामरिक पक्ष है। जो US और चाइना में जो कंपटीशन, राइवलरी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक जो चल रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर भी हो रहा है। तो इस टीपीपी को सिर्फ आर्थिक मामलों से नहीं बल्कि इसको सामरिक मामलों से भी जोड़कर देखना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए समझौता कितना अच्छा रह सकता है या क्या इसमें नेगेटिव्स भी हैं?
देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात है, आप देखेंगे कि जो 12 कंट्रीज या जो 11 कंट्रीज इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर या ऑस्ट्रेलिया को लेकर 12 कंट्रीज, इसमें से काफी देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी द्विपक्षीय समझौता हुआ है, चाहे वो यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड के साथ तो बहुत सालों से है, सिंगापुर के साथ है, तो इन सब कंट्रीज के साथ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय समझौता है और यूएस के साथ भी द्विपक्षीय समझौता 2005-2006 में ही हो गया था जब हार्वर्ड सरकार थी। तो ऑस्ट्रेलिया को ये फायदा ये है कि इसमें आर्थिक रूप से ये फायदा ये है कि अब 12 कंट्रीज के साथ अलग अलग तरीके से डील करने की जरूरत नहीं है, एज ए होल ऑस्ट्रेलिया डील कर सकती है जिसमें अन्य 11 कंट्रीज जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका जो नेगेटिव पक्ष है, जैसा कि हम सुन रहे हैं, जैसे यहाँ के एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं वो लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज है या जापान जैसी कंट्रीज है वहाँ पे फार्मर्स लोगों को काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, तो और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सब्सिडी अवेलेबल नहीं है फार्मर्स को, तो ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स को विश्व के बाजार में खासकर टीपीपी नेशंस में इन लोगों को काफ़ी कॉम्पिटिशन में इन लोगों को टफनेस या टफ कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई इस तरीके का आर्थिक समझौता होता है तो इसमें कुछ अच्छे पक्ष होते हैं, कुछ इसमें निषेधात्मक पक्ष होते हैं, तो कुछ सेक्टर्स इसमें फायदेमंद होंगे, कुछ सेक्टर्स को इसमें नुकसान होगा और ऑस्ट्रेलिया इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि सरकार और मतलब दोनों पार्टीज इस टीपीपी के समझौते के पक्ष में है, जबकि लेबर पार्टी का ये कहना है कि इसमें जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसको किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन अब तो ये सिग्नेचर हो चुका है, इसलिए अब इन देशों के पार्लियामेंट को या यूएस में कांग्रेस को इसको पास करना है। जब तक इन देशों की पार्लियामेंट या कांग्रेस पास नहीं करेगी तब तक ये समझौता इंप्लीमेंट किया नहीं जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, अगले साल भर के लगभग में पता चलेगा।
जी, बस एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में पुणेंद्र जी की, न्यूजीलैंड वगैरह में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।
देखिए, ऐसा है कि हमें याद रखना चाहिए कि टीपीपी का जो प्रपोजल था वो सबसे पहले 2003 में आया था, मतलब 12-13 साल पहले की बात हो गई है, और जो प्रपोजल आया था वो तीन कंट्रीज उसमें मेन थे, एक सिंगापुर था, वो भी छोटी कंट्री है, चिले, चलो ये तो छोटी कंट्री नहीं है, काफी बड़ी कंट्री है लैटिन अमेरिका में, और न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है ओरिजिनल प्रपोजल ऑफ दिस टीपीपी, लेकिन पिछले 10 साल से, पिछले 2-3 साल में जब इसको एक्सेलरेट किया गया तो वहां के विशेषकर फार्मर्स लोगों को ये अंदाजा लगा कि टीपीपी से वहां के फार्मर्स को भी नुकसान हो सकता है। तो जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, इसी तरीके से न्यूजीलैंड भी एक एग्रीकल्चर या कृषि प्रधान देश है, तो वहां पे फार्मर्स को ये लगता है कि इससे उन लोगों को कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है या उनका कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कंट्रीज अपने फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में न्यूजीलैंड के फार्मर्स को भी कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। बाकी कुछ और चीजें भी हैं, जैसे टीपीपी में जैसे मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कही गई है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड में भी कि मेडिसिन वगैरह काफी महंगी हो जाएंगी इस टीपीपी के कारण, तो कुछ वहाँ पे भी विरोध है। और आज भी जब सिग्नेचर होने जा रहा था तो काफी डेमोन्स्ट्रेशन था वहाँ पे, 1000-2000 लोग, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब सरकार, सभी देशों की सरकार ने इसको एग्रीमेंट को साइन कर दिया है, उन्हें ये देखना है कि अपनी पार्लियामेंट से उसको पास कराएं।